मेरी माँ जब पौराणिक बातें बताती थी तो उनकी कल्पना के मानसरोवर में सुनहरे हंस मोती चुगते थे, जिसमें स्वर्ण कमल खिलते थे। माँ कितना याद आई। वो होती तो मैं उन्हें मानसरोवर और कैलाश के प्रथम दर्शन अवश्य करवाती। मैंने ही उम्र का आधा पड़ाव पार कर लिया, तब तो मुझे ही सूझी।
पेश है मनीषा कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।
यह 19 अगस्त का सूर्योदय था। हम मानसरोवर के तट पर थे। मानसरोवर झील की एक अद्भुत विशेषता है, इसके तटों पर तो खूब लहरें उठती हैं, किंतु मध्य भाग की जलराशि सदैव स्थिर व शांत रहती है। इसमें प्रत्यूष काल और सांध्य काल में कैलाश पर्वत के उज्ज्वल धवल शिखर को उत्तर में और मानधाता शिखर को दक्षिण में प्रतिबिंबित करते हुए देखा जा सकता है। हम जल्दी जल्दी लौटकर कमरे से कैमरा निकाल लाए। अचानक सब सुनहरा दिखने लगा। सामने इसी सुनहरी आभा में गौरवपूर्ण कैलाश क्षितिज पर दिखे। सूर्य ने सलेटी जल पर स्पॉटलाइट डाली जगह जगह। सुबह के समय मानसरोवर के जल पर पड़ने वाली सूर्य रश्मियाँ जब परावर्तित होती हैं तो जल के भीतर से कितनी मणियों का खजाना फूट पड़ता है। मेरी माँ जब पौराणिक बातें बताती थी तो उनकी कल्पना के मानसरोवर में सुनहरे हंस मोती चुगते थे, जिसमें स्वर्ण कमल खिलते थे। माँ कितना याद आई। वो होती तो मैं उन्हें मानसरोवर और कैलाश के प्रथम दर्शन अवश्य करवाती। मैंने ही उम्र का आधा पड़ाव पार कर लिया, तब तो मुझे ही सूझी। खैर, सूर्योदय के साथ ही कैलाश का उत्तरी भाग का दृश्य एकाएक मानसरोवर में झलझला उठा था। वहाँ से सूर्योदय देखने वाले हर व्यक्ति के मन में जादुई सम्मोहन जगा होगा, जब गतिमान सूर्य के प्रकाश से मानधाता पर्वत श्रृंखलाएं अचानक प्रज्वलित प्रकाश स्तंभों से दिखाई देने लगी थी और उन चमकते पर्वत स्तंभों से निकलती हुई सुनहरी धुंध बहुत अलौकिक लग रही थी। बाबा नागार्जुन की यह कविता जो लगभग रटी हुई सी है, मैं बुदबुदाने लगी। अमर धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंत खोजते हंसों को तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मुझे क्या लगता है कि ये जो मानसरोवर के तट की चमकीली रेत है ना, वही मोती से दिखते होंगे, और ये जो बत्तखें हैं ये इन छोटे रेत में कणों में से कीट खोजती हैं, तो ये भ्रम होता होगा कि मोती चुग रही हैं। फिर पौराणिक कथा रचयिताओं की कल्पना का क्या अंत है। हमारे साथ ही पक्षी जाग गए थे और शुरू हुआ मीठा कोलाहल। मानसरोवर में नीले के कई शेड्स दिख रहे थे। अचानक नीला देखते हुए हरा दिखता और बीच बीच में कई रंग आते जाते रहे। एक ओर जहां लोग यज्ञ हवन आदि के जुगत में जुड़े थे, हम कैमरे में हर अलौकिक क्षण को कैद कर रहे थे। नहाना तो संभव नहीं हो सका था, मैंने सैनिटाइजर और गीले तौलिए से खुद को स्वच्छ कर लिया और ताज़ा कपड़े पहन लिए थे। नहाने की आदत कैलाश परिक्रमा के दौरान बिल्कुल सागा के बाद से नहीं चल सकती। मानसरोवर के तट पर बने इस मड हाउस में तो नहाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। चीनी नियमानुसार हवन मानसरोवर तट पर बिल्कुल अलाउड नहीं था, मगर फिर भी हमारे दलों के लोगों ने वहाँ उपलब्ध एक पंडित की शह से वहीं तट पर हवन कुंड जमा लिया। लोग क्या क्या संग लाए थे, हवन कुंड धूप दीप हवन सामग्री कपूर समस्त पूजा सामग्री। हम तो केवल आस्था भरा मन लेकर चले थे। अब बस यही था जो तर्पण को था, अब तट पर हवन होना था। तमाम मानहारियों के बावजूद हुआ, जिसमें मैंने और हंशु ने हाथ जोड़ सर नवाजे जितना हिस्सा लिया। तरह तरह की रंग बिरंगी हविष्य डाले उस निर्मल वातावरण में धुआं करने में मेरी दिलचस्पी न के बराबर थी। मानसरोवर के जल की अंजुरी का सूर्य को अर्घ ही मेरी आराधना थी। मेरे एक ओर बादलों से निकले कैलाश के द्वितीय दर्शन थे और दूसरी ओर बुद्ध का प्रतीक एक गोम्पा था। शिव और बुद्ध दोनों मन का एक एक छोर पकड़े खड़े थे। अंशु शिव स्तुति में कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे। बहुत कम देर को अंशुमाली ने किरणों को धरती पर फेंका, फिर बादलों की रजाई में दुबक गए। मानसरोवर के तट तीन समूहों द्वारा किए जा रहे यज्ञ से धूम्र धुंध से धूमिल हो गए। अब हमें परिक्रमा में साथ ले जाने वाला सामान छांटना था। कैलाश परिक्रमा में तो केवल पिट्ठू बैग जाएगा। एक लेयर दर लेयर जो पहना है, इनर लोअर, पूरी भांग की टी शर्ट, स्वेटर और जैकेट, दो जोड़ी मोजे, मफलर, टोपी, दस्ताने। बाकी बैग में एक इनर और लोअर और टी शर्ट और मोजे। एक जोड़ी अंडरगारमेंट्स अतिरिक्त रखने थे कि अगर कपड़े भीग जाएं तो, वरना वहां कपड़े बदलने का भी अवसर और स्थान नहीं मिलने वाला था। पिट्ठू बैग में बाकी खाने पीने की हाई कैलोरी मगर हल्का फुल्का चबाने वाला मेवे के छोटे पैकेट्स और गर्म पानी की बॉटल, रेनकोट, टॉर्च और कैमरा रखने के बस। बाकी सारा सामान दार्चिन में होटल में छूटना था। हमने भी भाग लिया हवन में, फिर नाश्ते को चले आए। मुझे लग रहा था कि जितनी जल्दी परिक्रमा आरंभ हो उतना अधिक कैलाश का सानिध्य मिले, मगर हवन में ही हमारे दल के लोग समय लगा रहे थे। मैंने वहां देखा कुछ लोग जलीय घास के पास जल पक्षियों को चने मुरमुरे खिला रहे थे और भूरे सिर वाली गल नामक जल पाखी डांडराए ट्राए ट्राए का शोर मचा रहे थे। मेरा मन मानसरोवर में तैरती बार हेडेड गूज और ब्राउन हेडेड गर्ल और उनकी किलोलों को पास से देखने का था, उनको मुरमुरे खिलाने का था। लेकिन हमारा गुजराती समूह नाश्ते के लिए बढ़ा तो शीला जी ने हमें पुकार लिया। अंशु ने नाश्ता किया, मैंने केवल बॉर्नविटा मिल्क पिया क्योंकि कुछ सॉलिड खाने से तुरंत जी मितलाने लगता था। बस तरल और गुनगुना पेय ही मन को भा रहा था। हम दोनों थर्मसों को धोकर एक में चाय और एक में गर्म पानी भरा। नाश्ते के बाद जब सरोवर की तरफ मुख किए चाय पी रहे थे तभी मेरा मेघ अपना घूसर थैला संभाले हड़बड़ाता सा आकाश में प्रकट हुआ। मैंने सिर उठाया, यह भी रात देर से सोया होगा। मन किया एक प्याली चाय पकड़ा दूं, लेकिन वह ठहरा मरुत प्राण मानसरोवर की लहरों को दुलरा कर नम हुई हवा को खुद में भरकर ही वह तरोताज़ा हो गया था। अंततः हमारा काफिला चला। मानसरोवर परिक्रमा का शेष आरंभ हुआ। मानसरोवर के थोड़ा आगे एक टीले पर एक गोम्पा पड़ता है। कुछ लोग उतरे, कुछ बस में बैठे रहे। इसके गर्भगृह में बौद्ध अवतारों की मूर्तियां मणिमंत्र लगे हैं। मठ के लामा मुस्कुराए हमें देखा। वहां याक के मक्खन के दीपक रखे थे, हमने उन्हें दो युआन देकर जलाया। गुम्पा के टीले पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी जो स्वर्ण की सीढ़ियों का भास दे रही थी। मुझे याद आया प्रणवानंद जी लिखते हैं कि तिब्बत में सोना पाया जाता है। उसके आगे सेरालुंग गोम्पा पड़ा जिसमें विशाल मूर्तियां और प्राचीन पांडुलिपियां थी। तट पर सुनहरी रेत लोग एकत्र करने में लगे थे। मैंने भी एक डेविया में रखने के लिए थोड़ी सी ले ली। कुछ दूर चलकर हमें फिर राक्षस ताल के दर्शन हुए। मैंने गौर किया कि सुबह के समय भी उसके ऊपर कोई पंछी नजर नहीं आया। हाँ, आसमान में जरूर लाल चोंच वाले कौवे नजर आए जिनको कौफ कहते हैं। भूगोल के अनुसार सतलुज नदी का उद्गम इसी राक्षस ताल से हुआ है ना आश्चर्य। सतलुज जैसी लंबी दूरी की कई शहरों की प्यास बुझाने वाली नदी इस जीवन रहित राक्षस ताल से निकलती है। हो सकता है राक्षस ताल के अंतस में भीतर कहीं कैलाश से पिघल कर आए जल के मीठे स्रोत बहते हों। राक्षस ताल को देखकर एक ही बात उनसास की तरह निकलती है, हाय ऐसी श्रापित सुंदरता। कहते हैं तिब्बत हिमाचल को जोड़ने वाले शिपकीला दर्रे से भारत के किन्नर लोक में प्रवेश करती है सतलुज। क्या किन्नर प्रदेश ही अलग नगरी है? मिथकीय कथाओं में किन्नर देश में सतलुज का लाने का श्रेय वाणासुर को दिया जाता है, जैसे गंगा को लाने का श्रेय भगीरथ को है। ऋग्वेद में ऋषि मुनियों ने शत्रुद्रु सतलुज का प्राचीन नाम का यशगान किया है। शत्रुद्रु के ही तो किनारे राजा भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया। शत्रुद्रु की ही तरह कैलाश गुरला मांदता मानसरोवर और राक्षस ताल और यहाँ के अन्य पहाड़ों से कई भारतीय छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। करनाली नदी जो तिब्बत और नेपाल में बहने के बाद भारत में प्रवेश के समय घाघरा और पावनपुरी अयोध्या सरयू के नाम से जानी जाती है। यही बिहार में पटना से थोड़ा पहले छपरा के पास गंगा में जा मिलती है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र का उद्गम भी यहीं से होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी यही है। इसी वजह से कैलाश इतना प्रिय है हमें। नदियाँ किसी भारतीय मानस को महज एक प्राकृतिक अवयव लग ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे वेदों से लेकर पुराणों और संस्कृत साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक नदियों का इतना अधिक मानवीकरण किया गया है। हर नदी की मर्म छूने वाली कथा होती है। पूरे रास्ते बस से पैदल परिक्रमा करते हुए हर रास्ते पर काटती, कभी प्रकट कभी ओझल होती नदियों से मेरा विश्वामित्र की तरह रोक कर बात करने का मन हो आया। ऋग्वेद का नदी सूक्त अद्भुत है। संस्कृत के विद्वान और वेदों के अनूठे विश्लेषक उज्जैन में रहने वाले मुरलीधर चांदनीवाला ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र नदी संवाद को अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, इस प्रसिद्ध वैदिक संवाद में ऋषि नदियों को ठहर कर प्रार्थना सुनने का निवेदन करता है, मगर नदियां तो प्रहमान हैं, कभी ठहरी तो नहीं किंतु झुक अवश्य गईं। विद्वान ऋषि के मधुर वचन सुनकर इस सुंदर कथोपकथन में अप्रतिम काव्य के दर्शन होते हैं। विश्व साहित्य में नदी को संबोधित करती यह पहली आदि कविता है और इसका कोई जोड़ नहीं। प्रवता नामूष्ति उपस्था दश्वे इव विशेते हासमाने गावे विशुर्भे मातरा रिहाणे विपाट छुतरदी पयासा जवेते। पहाड़ों के घर से निकलकर आई हो दो घोड़ियों की तरह दौड़ती हुई स्पर्धा में, या दो शुर्भ धेनुओं सी भागी चली आ रही चाटती हुई प्यार से बछड़े को। हे नदियों बहती हो तुम, कितनी उद्दाम कितनी वेगवती हो, तुमको कोई पुरुषार्थी भेज रहा आगे की ओर। दोनों हाथ फैलाकर तुम जा रही रथ पर बैठी हुई समुद्र के पास। लहरें आपस में चूमती हुई मिल जाती तीव्र उत्कंठा में, नदियों तुम मात्र वत्सला हो, मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी मलिनताएं धोकर तुम भर दोगी मुझ में अपनी शुभ चिंताएं। शिशुओं को दुलारती हुई तुम जा रही हो उस घर जहाँ तुम बस जाओगी सदा के लिए, जहाँ तुम बस जाओगी सदा के लिए। ऋषिवर, हम बहाती हुई जा रही उस धाम उस देवों ने बनाया हमारे लिए, हम रुक नहीं सकती पल भर कोई पुकारता हमें अनजान क्षितिज पर। हम रुक नहीं सकती उस पल कोई पुकारता हमें अनजान क्षितिज पर, मैं कुशिक का पुत्र निवेदित हूँ नदियों तुम्हारे लिए। मुहूर्त भर ठहरो सुन लो मेरा वचन, तुम ऋत से संपन्न हो ले चलो मुझे अपने साथ वहाँ जो तुम्हारा गंतव्य है। ले चलो मुझे अपने साथ वहाँ जो तुम्हारा गंतव्य है। ऋषिवर, वज्रबाहु ने परिधियाँ तोड़ी, उत्प्रेरक सुंदर हाथों ने हम नदियों को मुक्त किया आगे के लिए। हम उसी की आज्ञानुवर्तनी दौड़ रही अनवरत लक्ष्य की ओर। सौ सौ बार तुम बोलती हो जाती हो, पहाड़ों को घर से निकलकर आई हो, दो घोड़ियों की तरह दौड़ती हुई स्पर्धा में, या दो शुर्भ नैनों सी भागी चली आ रही चाटती हुई प्यार से बछड़े को। हे नदियों बहती हुई तुम कितनी उद्दाम कितनी वेगवती हो, तुमको कोई पुरुषार्थी भेज रहा आगे की ओर। दोनों हाथ फैलाकर तुम जा रही रथ पर बैठी हुई समुद्र के पास। लहरें आपस में चूमती हुई मिल जाती तीव्र उत्कंठा में, नदियों तुम मात्र वत्सला हो, मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी मलिनताएं धोकर तुम कर दोगी मुझ में अपनी शुचिताएं। शिशुओं को दुलारती हुई तुम जा रही उस घर जहाँ तुम बस जाओगी सदा के लिए। नदियाँ उत्तर देती हैं, ऋषिवर, हम बहती हुई जा रही उस धाम जिसे देवों ने बनाया हमारे लिए, हम रुक नहीं सकती पल भर कोई पुकारता हमें अनजान क्षितिज पर। ऋषि फिर निवेदन करता है, मैं कुशिक का पुत्र निवेदित हूँ नदियों तुम्हारे लिए। मुहूर्त भर ठहरो सुन लो मेरा वचन, तुम ऋत से संपन्न हो ले चलो मुझे अपने साथ वहाँ जो तुम्हारा गंतव्य है। नदियाँ जलती में कहती हैं, ऋषिवर, वज्रबाहु ने परिधियाँ तोड़ी, उत्प्रेरक सुंदर हाथों ने हम नदियों को मुक्त किया आगे के लिए। हम उसी की आज्ञा अनुवर्तिनी दौड़ रही अनवरत लक्ष्य की ओर। ऋषि उत्तर से संतुष्ट हैं, सौ सौ बार तुम बोलती हुई जाती हो उसी की पराक्रम कथाएं, बताती जाती हो किस तरह उसने अही को परास्त किया और किस तरह भेद डाले असुरों के दुर्ग। तुम कितनी भली लगती हो इच्छा करती हुई लोक मंगल की। नदियाँ खिलखिलाती हैं वचन लेती हैं, हे ऋषिवर, तुम भूल न जाना इन वचनों को, युगों युगों तक वीरता का जय घोष हो। हे कवि, तुम्हारी इन स्तुतियों में उसका निवास हो। हे पुरुष, तुम्हें नमस्कार। ऋषि फिर कहते हैं, नदियों मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे वचन सुनो। बड़ी दूर से आया मैं तुम्हारे लिए, झुक जाओ मेरे लिए तनिक। अपार सिंधु से पार लगाने में मेरी सहायता करो। नदियाँ तनिक झुकती हैं। कवि, हम तुम्हारे वचन सुन रही हैं, तुम दूर से चले आए हमारे समीप। लो मैं झुकती हूँ, जैसे शिशु को दूध पिलाती हुई माँ, या कोई तरुणी प्रिय के आलिंगन के लिए। कृतार्थ हैं ऋषि, कहते हैं, मेरी प्रिय नदियों, वर दो की ज्योति यजन करती हुई, भारत की संतानें पार लग जाएं, मैं तुम्हारी स्तुति गाऊंगा, क्योंकि तुम आज्ञा का पालन करती चली आ रही आदिकाल से। प्रकाश की खोज में निकला हुआ भारत, अंततः पार हुआ, विप्र ने किया नदियों का मधुर स्तवन। नदियों प्रसन्न हो, तुम ही हमारा जीवन, हमारा आश्रय, हमें अपने रस से सींचती हुई बहती रहो। हे नदियों, तुम्हारी लहरों में जो उमंग है, वह शांति की उपज के लिए हो। तुम मुक्त हो तो हमें भी मुक्ति दो, तुम निष्पाप हो तो हमें भी निष्पाप करो, हमें बंधन मुक्त कर समृद्ध दो। ऋषि विश्वामित्र के कहने से तो रुकी नहीं नदियाँ, मेरे कहने से कहाँ रुकती, मगर अपनी उफनती लहरों को थोड़ा शांत कर मेरा भी आह्वान सुना, और दुर्लभ ही पथ विचलन करने वाली नदियों ने मेरी जिज्ञासा शांत की और आशीर्वचन देते हुए मुझे दी गईं। राक्षस ताल पार कर मानसरोवर का बाकी चक्कर पूरा कर हम दार्चेन पहुँचे। दार्चेन मानसरोवर अष्टपद सभी समुद्र तल से 15,300 से 15,500 फीट की ऊंचाई के बीच पड़ते हैं। आदत हो जाने पर सांस की कठिनाइयां उतनी नहीं होती। रास्ते में हमें दक्षिणमुखी कैलाश की झलक दिखी और ओझल हो गई। कैलाश प्रकट और ओझल का खेल बहुत खेलते हैं, पर यह तय था कि कोई चाहे तो मानसरोवर तक आना कठिन नहीं है। अगर कोई दुर्गम परिक्रमा न भी करना चाहे तो अष्टपद जाकर कैलाश के दक्षिण मुख के दर्शन करके लौट सकता है। उसके लिए शारीरिक बाध्यता, स्वास्थ्य की बाध्यता नहीं है। हमारे समूह के भी 3-4 लोग शारीरिक अशक्तता के चलते मानसरोवर से ही कैलाश के दर्शन कर दार्चेन के एक गेस्ट हाउस में रुक गए थे, हमारे साथ नहीं चले। एक महिला 100 किलो की थी, उनके पति इस बात से आहत थे कि उनके कारण वह भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बहुत हसमुख व्यक्ति थे जो नकली जेवरों की दुकान चलाते थे, और वे उनकी पत्नी भी नहीं जा सके। हम पहले अष्टपद के लिए एक मुहाने पर पहुंचे, जहां जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने तपस्या की थी और निर्वाण प्राप्त किया था। यहां से आगे बस नहीं जा सकती थी, पास जाने के लिए पैदल जाना होता। हमारे पास समय कम था। हम सब ने दूर से दक्षिणमुखी कैलाश के दर्शन किए। इस तरफ कैलाश में सीढ़ी नुमा आकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, ये बर्फ की सीढ़ियाँ अचरज में डाल देती हैं। लगता है कि सर्र सर्र चढ़ जाओगे, मगर कैलाश अपने एकांत में प्रवेश की आज्ञा किसी को नहीं देते। शुभ्र कैलाश के सीढ़ीदार हिमाच्छादित दक्षिणी मुख पर प्रातः की सुनहरी रश्मियाँ अटखेलियाँ कर रही थी, मेरे मन में कविता जन्म ले रही थी। कभी रजत रश्मियाँ, कभी स्वर्णिम आभा, कभी निश्चल मन का निर्मल हास, कभी भेद भरे मन का लहूरिस जाता, जब हरितिमा बाहें फैलाकर दौड़ती उस ओर। विराट के दुख से उपजा ये हिमाश्रु मुस्काता, जब तब उनमें व्योम झांकता, आंकते हुए अपने विस्तार हर दिशा में रूप बदलता। अपने ही श्वेत और श्याम से उलझता प्रत्युष बेला उस निहिसीम के अप्रकट से नित्य प्रति अप्रकट होता। अष्टपद हम अधिक नहीं रुक सके, क्योंकि यहाँ से दार्चेन 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पहुँचकर फिर से एक चेक पॉइंट पड़ा। चीन कोर तीर्थयात्रियों से भला हर जगह पर क्या भय होता। हाँ, हर जगह जांच चौकियाँ। वहाँ से 6 किलोमीटर बस में चलकर हम यम द्वार पहुँचे। यम द्वार दो तरफा खुली तिब्बती गुम्बदनुमा द्वार था। यम द्वार पहुँचने का अभिप्राय यह है कि यम की सीमा और यम के कानून कायदे बस यहीं तक चल सकते हैं। आगे शिव की पर्वतीय प्राचीरों में तो सब कुछ शिव की आज्ञा से ही होगा। यहाँ से ही 52 किलोमीटर का कैलाश परिक्रमा मार्ग शुरू होता है। यम द्वार एक छोटे गुम्पा सा सजा था। रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वजों से। यह एक छोटा दोनों दिशाओं में दरवाजे वाला प्रकोष्ठ था। यह महज एक द्वार नहीं, यह वह सीमा है जहां आप अपनी आशंकाएं और भय यहीं छोड़ देते हो। बहुत सारे दुनियावी मोह भी। तिब्बती तीर्थयात्रियों का एक झुंड पैदल हमारे सामने से गुजरा। उनमें पैदल चलते बच्चे भी थे, उछलते कूदते। बड़ों के हाथ में मनकों की माला थी, वे मंत्र बुदबुदाते चल रहे थे। निर्लिप बौद्ध धर्म मुझे बहुत खींचता है। इस बौद्ध तोरण द्वार से निकलकर हम यात्री बाहर निकले। इसके आसपास पुराने कपड़े, सींग, सिक्के बिखरे पड़े थे। यम द्वार पर हमारे बस के तिब्बत ड्राइवर ने हम सबको शुभकामनाएं देते हुए कहा, काल्पेया, मतलब आराम से चलना ताकि लौट सको।